आस्तिक उस खिलौने से बात ही कर रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। एक कर्मचारी अंदर आते हुए कहता है, आस्तिक रायचंद, तुमसे मिलने कोई आया है। आस्तिक का चेहरा अचानक से खिल जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरुणिमा, आज ही मुझसे मिलने के लिए? पर कर्मचारियों ने कहा, नहीं, अरुणिमा तो नाम नहीं है उनका, पर वो अपने आप को तुम्हारी ताईजी बता रही हैं। आस्तिक ने उस खिलौने को प्यार से अपनी गोद में उठाया और उसे सहलाते हुए कहने लगा, मैं किसी ताईजी को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ अरुणिमा को जानता हूँ। मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। तुम जाओ और अरुणिमा को बुला कर लाओ। उसे कहो बच्चे याद कर रहे हैं, वो अपनी मम्मा को बुला रहा है। हॉस्पिटल का स्टाफ दरवाज़ा वापस बंद करता है और पीछे खड़ी ताईजी को देखते हुए कहता है, वो तो आपको पहचानता भी नहीं है, आप क्या करेंगे उससे मिलकर? लेकिन ताईजी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं, एक बेटा अपनी माँ को नहीं पहचानता है, पर माँ तो अपने बेटे को हर सूरत में पहचान लेती है ना, मुझे उससे फिर भी मिलना है। अस्पताल स्टाफ नामे सर हिलाता है और आस्तिक के कमरे की तरफ इशारा करता है। ताईजी एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आस्तिक के कमरे की तरफ बढ़ रही थीं। वैसे तो उन्होंने कहा था कि वो कभी भी आस्तिक से नहीं मिलना चाहेंगी और ना ही कभी सिंगल लौट कर आएंगी, लेकिन जब उन्हें आस्तिक की हालत के बारे में पता चला तो वो खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई थी। सच ही तो कहा है दुनिया में कि पूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। ताईजी ने भले ही आस्तिक को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने आस्तिक की परवरिश की थी। आस्तिक के हर अच्छे और बुरे पहलू से वो वाकिफ थी। ताईजी ने दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो आस्तिक पालती मारकर बैठा हुआ था और अपनी गोदी में उसे खिलौने वाले बच्चों को रखकर उसे बच्चों की तरह लोरी सुना रहा था। आस्तिक की ऐसी बदहवासी वाली हालत देखकर ताईजी से वहां रुका नहीं गया। वो अपने आंसुओं को पोंछती हैं और वहां से डॉक्टर के केबिन में चली जाती हैं। ताईजी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की ऐसी हालत कैसी हो गई है? इसका कोई तो इलाज बताइए, कुछ तो होगा जो मेरे बेटे को ठीक कर सके। डॉक्टर ने कहा, वो किसी अरुणिमा का नाम ले लेकर चिल्ला रहे हैं। वो हमेशा अपने बच्चों को याद करते हैं। वो कहते हैं, अरुणिमा, मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे बच्चे तुम्हें बुला रहे हैं। उन्हें दवा के अलावा देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। जिस तरीके से वो अरुणिमा को पुकारते हैं, ऐसे में लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ अरुणिमा ही है जो उन्हें वो प्यार दे सकती है जो उन्हें चाहिए। ताईजी को सब समझ में आ गया था और वो अब और ज़्यादा परेशान हो गई थी। आस्तिक ने जैसा अत्याचार अरुणिमा के साथ किया था, उसके बाद अरुणिमा उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। सक्षम के फार्म हाउस पर अरुणिमा अपने कमरे के बेड पर लेटी हुई थी और मिश्री उसके पैरों में तेल से मालिश कर रही थी। अचानक से अरुणिमा को अपने पेट में हलचल सा महसूस होता है। अभी उसकी डिलीवरी को एक हफ्ता बाकी था, लेकिन फिर भी उसे धीरे धीरे दर्द का अनुभव होने लगा था। कुछ ही पल में अरुणिमा को गीलापन महसूस होने लगता है और वो मिश्री को देखकर कहती है, जल्दी से सक्षम को फ़ोन करो और जानवी को भी। अरुणिमा को इस तरीके से घबराते देख मिश्री भी डर गई थी और जब उसने देखा कि अरुणिमा अपना पेट पकड़कर सहारा लेने की कोशिश कर रही है तो मिश्री समझ गई कि अरुणिमा की डिलीवरी का टाइम आ गया है। वो जल्दी से अरुणिमा के कमरे से निकलती है और बाहर जाकर फार्म हाउस के केयरटेकर को अरुणिमा की हालत के बारे में बताती है। केयरटेकर पहले से ही इस चीज़ के लिए सतर्क था। उसने जल्दी ड्राइवर को रेडी रहने के लिए कहा और अरुणिमा को गाड़ी की तरफ लाने लगा, लेकिन अरुणिमा का दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कमरे में आराम फरमा रही शारदा जी ने जब अरुणिमा की दर्द भरी चीख सुनी तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आती हैं। वो बाहर देखती हैं तो अरुणिमा दर्द से तड़प रही थी और केयरटेकर और मिश्री उसे बाहर की तरफ ले जा रहे थे। शारदा जी समझ गई थी कि अरुणिमा की डिलीवरी का टाइम हो गया है। वो झूठी सहानुभूति दिखाने के बहाने अरुणिमा के साथ अस्पताल तक गई थी। मिश्री ने जैसे ही सक्षम को फ़ोन करके ये बताया कि अरुणिमा की डिलीवरी का टाइम आ गया है, सक्षम ने अस्पताल में इन्फॉर्म कर दिया था। अस्पताल पहुंचने के साथ ही अरुणिमा को लेबर रूम में ले जाया गया था। अपने बच्चों को जन्म देते वक्त अरुणिमा हर उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी जो सच में दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन बस अपने बच्चों को देखने की इच्छा में अरुणिमा ने उस दर्द को भी हंसते हंसते बर्दाश्त कर लिया था। आस्तिक का हर एक दर्द भी तो अरुणिमा ने इसी तरीके से बर्दाश्त किया था, पर आज इस दर्द में उसे एक सुकून महसूस हो रहा था। एक तेज चीख के साथ अरुणिमा अपनी चेतना को खो देती है और बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले उसे कुछ सुनाई दिया था, वो थी उसके बच्चों के रोने की आवाज़। कुछ घंटे बाद जब अरुणिमा को होश आता है तो वो देखती है वो अस्पताल के कपड़ों में अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है। अरुणिमा को अपना शरीर में बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही थी। डिलीवरी के समय उसका बहुत अधिक खून निकला था क्योंकि जुड़वा बच्चे थे, जिस वजह से अरुणिमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी सहन करनी पड़ी थी। अरुणिमा ने इधर उधर नज़र घुमाई तो एक सिस्टर उसके बेड के पास खड़ी थी और वो पेपर पर कुछ नोट कर रही थी। जैसे ही उसने अरुणिमा को देखा, नर्स उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आपके होश आ गए हैं। लेकिन अरुणिमा घबराते हुए कैंडल को देखती हैं और कहती हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? सिस्टर ने कहा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे ठीक हैं,
बस थोड़ी ही देर में हम बच्चों को आपके पास लेकर आएंगे। तभी दरवाजा खुलता है और मिश्री, सक्षम और जानवी के साथ बाकी सब भी आए हुए थे। शारदा जी वहां मौजूद नहीं थी। जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद वो वहां से चली गई थी। उसने ये भी नहीं सुना था कि अरुणिमा को बेटे हुए हैं या बेटी हुई है। अरुणिमा बहुत बेचैनी से अपने बच्चों को देखना चाहती थी। तभी सिस्टम अपनी गोद में दो छोटे छोटे बच्चे लेकर आती हैं और उन्हें अरुणिमा के सामने करती हैं। अरुणिमा अपने बच्चों का छोटा सा चेहरा देखती है, एकदम लाल, छोटे छोटे दो चेहरे उसके सामने थे। उसने हैरानी से नर्स को देखा तो नर्स मुस्कुराते हुए कहती है, दोनों लड़के हैं। नर्स ने इशारे में बताया कि उसका बड़ा बेटा कौन सा है और उसका छोटा बेटा कौन सा है। अरुणिमा ने अपने दोनों बच्चों को एक एक करके गोद में लिया और उन्हें चूमने लगी। आकाश और अनंत, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है मेरे बच्चों।